ओम शांति। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी रूहानी फरिश्तों का मधुबन बेहद घर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अश्विना दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी आगरा ईदगाह से हैं, ओरिजिनली मुंबई से। आप बचपन से ही ज्ञान में हैं और 43 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं इस बेहद यज्ञ में दे रहे हैं। दीदी जी आगरा में जोन कमेटी के सचिव हैं, अनेक विंग्स की सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं, अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी आपकी सहभागिता होती है और अनेक लोगों को आप अपनी मधुर वाणी से लाभान्वित करते हैं। दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, उदाहरण मूरत, आधार मूरत, उद्धार मूरत हैं आप। उदाहरण मूरत, आधार मूरत, उद्धार मूरत हैं आप। वरदानी मूरत, महादानी मूरत, हूबहू कभी दादियों सी कभी बाबा की सूरत हो आप। हूबहू कभी दादियों सी कभी बाबा सी सूरत हो आप। और आज दीदी जी हमें ब्राह्मण जीवन का महत्व इस विषय पर अपनी मधुर वाणी से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। यज्ञ की परंपरा ही रही शुरू से कि बाबा के घर आने वाले ब्राह्मण बच्चों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी को देखा होगा। हाथ उठाएं जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को, अच्छा बहुत है, दादी जानकी जी को देखा है, अच्छा दादी गुलजार जी को देखा है, अच्छा ठीक है। मेजोरिटी साकार बाबा वाले तो कम ही हो गए हम समझते हैं, क्योंकि बाबा साकार बाबा का समय है वो गया। अब दादियों को किसने देखा ये सबसे बड़ा, क्योंकि लगभग 2016 के बाद आने वाले जितने भी ज्ञान में हैं तो उनको दादी गुलजार जी को भी देखने का सौभाग्य नहीं मिला और दादी जानकी भी कोरोना पीरियड हुआ तो दादी जानकी को भी नहीं देख पाए। लेकिन हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने दादियों को भी देखा हुआ है। दादियों का आप देखेंगे कि बड़ी दादी का लास्ट में दादी जी को शायद और बातें बाबा के अलावा और बातें याद नहीं भी रहती थी, लेकिन दादी जी को जब भी लाया जाता था सभा में तो दादी जी एक वाक्य जरूर कहते थे कि शांतिवन में आए हुए सभी का स्वागत है। ये बाबा की परंपरा है, यज्ञ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ, और इस यज्ञ को जो समझते हैं वो यज्ञ वत्स ब्राह्मण आत्माएं हैं। दादी जानकी अक्सर कहती थी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण कोटों में कोई होते हैं। क्या अंतर है ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन और ब्राह्मण, दादी जिनको कहती थी ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्मा बाप का स्थापन किया हुआ यज्ञ, उसके नियम, उसकी मर्यादाएं और उसकी जो धारणाएं हैं, जिसको समझा हुआ है, वो रियल में ब्राह्मण आत्माएं हैं। और दादी हमेशा कहती थी कि यज्ञ चलता है ब्राह्मणों से, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया का एक क्रेज है या एक हवा चल रही है, तो बहुत लोग कहते हैं हम भी फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारीज को। ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो क्या करना है? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो कर रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हो आप? ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, शिव बाबा को फॉलो करेंगे, दादियों को फॉलो करते हैं हम। तो उन लोगों की भाषा में है कि उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे, टीवी पे देख लिया, तो वो समझते हम भी ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करते हैं, हम भी मेडिटेशन करते हैं। अब वो मेडिटेशन कहाँ करते होंगे वो हमें समझ में आज तक नहीं आया। पता नहीं परमधाम तक पहुंचते होंगे या नहीं, वो नहीं पता, लेकिन मेडिटेशन जरूर करते हैं। लेकिन हम आशा रखते हैं कि आप सभी तो बाबा मिलन में आए हुए हो, तो आप सभी बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे होंगे, क्योंकि मधुबन आने के अवसर तो बहुत प्राप्त होते हैं हमको, लेकिन जब किसी को भी पूछा जाता है और कहते हैं नहीं हम बाबा मिलन करके आए, तो वो एक सर्टिफाइड हो जाता है। किस बात का सर्टिफाइड हो जाता है? कि ये बाबा के नियमों का पालन करने वाली ये ऊंची आत्माएं हैं, ये फॉलो करने वाली प्रजा आत्मा नहीं है। और इसलिए बाबा के घर में जब बाबा मिलन में हम आते थे, तो हमारा जो कैटेगरी जो होती है वो होगी स्पेशल कैटेगरी। लगे तो बहुत है, लेकिन वो होगे सगे। आप सभी, हो सकता है आपकी बहनों ने आपको बताया ही होगा, और आप जब मुरली सुनते हो तभी भी आपको पता है बाबा कहते हैं कि इंद्र सभा में किन को लाना है। तो बाबा हमेशा कहते थे कि इंद्र सभा में कोई भी पतित को नहीं लाया जा सकता है, ये नियम है। तो वो इंद्र सभा कौन सी है? ये यही है जब बाबा मिलन होता है। कई बार कई लोगों के मुख से हम सुनते हैं, वो कहते बाबा कहाँ आते हैं अब, बाबा कहाँ आते हैं अब, तो वो स्क्रीन वाले बाबा रह गए हैं। आपको लगता है कि स्क्रीन वाले बाबा? नहीं, बाबा जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तभी भी शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में होती थी। बाबा अव्यक्त हुए 1969 से, दादी गुलजार जी के तन में बाबा का अवतरण होता था, और आज दादी का भी वो शरीर उपलब्ध नहीं है, फिर भी बाबा आज आ रहे हैं। बाबा मिलन आज भी इतना ही शक्तिशाली है। एक बात आप समझ लीजिए कि बाबा का हम सभी से वायदा है कि मैं तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। अभी परमधाम का गेट खुला नहीं है और बाबा का अवतरण भी बंद नहीं हुआ है, ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि बाबा नहीं आ रहे हैं। नहीं, बाबा पहले भी आते थे और बाबा आज भी आते हैं। बस सिर्फ यह हुआ है कि बाबा के मिलन की विधि में परिवर्तन हुआ है। साकार बाबा को जब देखते थे या मिलते थे, तो बाबा याद दिलाते थे कि बच्चे इसमें दो बाबा हैं, तुम्हें दो सितारे दिख रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखने वाले ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो लगता था ये बाबा है, तो बाबा उन्हें स्मृति दिलाते थे कि इन तन में दो सितारा दिख रहा है बच्चे। वो भी एक था बाबा मिलन, और उसकी विधि भी थी कि एक तन में दो सितारे दिखाई पड़े, ये बाबा मिलन होता था। और अनुभूतियां भी यही होती थी कि ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे कि बच्चे, या शिव बाबा भी कहते थे कि अगर ब्रह्मा भी कुछ कहते हैं तो ये मेरा मुरभी बच्चा है, ऐसे समझो शिव बाबा कह रहे। दोनों एक कंबाइंड स्वरूप में, वो मिलन था जिसमें एक तन में दो बाप दादा दोनों का मिलन होता था। फिर इसके बाद विधि परिवर्तन हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का अवतरण कभी भी होता था, आना जाना लगा रहता था। बाबा के कई आपने फोटोज देखे होंगे, तो उसमें कोई ऐसे बाबा के फोटोज में बाबा का ऐसा लाल चेहरा और ऐसी आंखों में खुमारी, वो रथ पर शिव बाबा सवार होते थे तो वो डबल इंजन की जो अनुभूति है हम इस फोटो से भी देखते हैं। लेकिन इसके बाद दादी गुलजार दादी जी के तन में बाबा आने लगे, तो वो तीन आत्माएं थी, दादी गुलजार की तो थी लेकिन बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की प्रवेश था। उसमें बाकायदे क्या होता था, अनाउंसमेंट है बाबा आएंगे, बाबा का समय फिक्स होता था और उस समय दादी की बाबा अवतरित होते थे, दादी वतन में जाती थी, बाबा सभा में दृष्टि देते, कई बार खड़े होकर, कई बार शांतिवन में हॉल का भी राउंड लगाकर बाबा ने सभी को दृष्टि दी इतने सारे बच्चों के लिए। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की वृद्धि तो होनी, अभी तो बहुत थोड़े, अभी तो बहुत आएंगे। और ये हमेशा अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि विधि बदलेगी। पहले जब बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के कमरे में मिलते थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा आए, फिर मेडिटेशन हॉल में जो पांडव भवन का था उसमें बाबा आते थे, इसके बाद ओम शांति भवन 1983 में बना, तो तभी लगता था बहुत बड़ा हॉल बना है। तभी भी बाबा स्टेज पे यही कहते थे कि बच्चे अभी तो और आएंगे और विधि बदलेगी, बाबा तैयार करते रहते थे। तो उसमें भी सारी रात हमने बाबा को बैठकर वरदान देते हुए देखा है पर्सनली। आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने पर्सनली बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से वरदान लिए होंगे, है आप में से? देखो बहुत कम है जिन्होंने पर्सनली लिए। अच्छा, हमें तो एक दो ही दिख रहे हैं। चलो बहुत भाग्यशाली है, इनसे अनुभव पूछो आप कैसे बाबा सारी रात बैठे रहते थे और एक एक को बाबा के सामने लाया जाता था और बाबा उन आत्मा को देखकर, आज जो मुरली में वरदान है इसी प्रकार से बाबा उन आत्माओं को वरदान देते थे एक एक को। इसके बाद सेंटर वाइज जो है वो बाबा मिलन होता था कि फलाने इसमें है कनेक्शन, जैसे आप सभी आए हो अगर दिल्ली के तो कहेंगे ये रजौरी कनेक्शन, ये पांडवहन कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन जो है उनके भाई बहनों को ऊपर बुलाया जाता था। इसके बाद बाबा ने नीचे है वो जोन वाइज बिठाते थे, आगे स्टेज पर भी पहले बिठाते थे फिर स्टेज के बाद नीचे बिठाना शुरू किया, जोन वाइज मिल लेते, फलाना बॉम्बे का ग्रुप, कलकत्ता का ग्रुप, चेन्नई का ग्रुप, बाबा का मिलन। इसके बाद सभा में जो है वो उठाया जाता है बाबा मिलन में कि कौन किस जोन के है। तो ये विधि तो चली, लेकिन अब जो विधि है उसमें बाबा की मुरलियां जो है रिवाइज हो रही है और ऊपर से बाबा का अवतरण भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि जब एक बच्चे के बुलाने पर बाबा कहते हैं मैं दौड़ कर आता हूं, तो क्या हम इतने ब्राह्मणों के आह्वान पर बाबा नहीं आते होंगे, आएंगे या नहीं? बिल्कुल आते हैं बाबा। तो इतने नशे से, क्योंकि आप अब आए हो बाबा मिलन के लिए, और निश्चित मैं जानती हूं कि मेजोरिटी लोग हैं वो नियम और मर्यादाओं को भी जानते होंगे, बाबा मिलन की नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है। यदि हम नियम और मर्यादाओं को एक ताक पर रख के मिलन करने भी आ गए। किसी ने हमें कह दिया कि भाई टिकट एक खाली है, तुम चलो, और चले आए हम। तो उसे यही नहीं पता है कि कौन आ रहा है। हमने बहुत लोगों को पहले भी देखा था, कोई कोटों में कोई ही होते होंगे, ज्यादा तो मैं नहीं समझती हूँ, आप सभी समझदार हो, कि जब बाबा आते थे तो कहते थे बाबा कहाँ आए, वो तो दादी जी बैठी हुए हैं। तो ऐसे भी कोई आ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ इस सभा में सारे लोग ऐसे पक्के हो गए जिन्होंने मुरली को, बाबा को, सबको समझा होगा, क्योंकि वर्तमान बाबा मिलन एक अनुभूति का विषय है, अनुभव है। ये आपको साकार में न पहले दिखे थे शिव बाबा, न अभी दिखेंगे, लेकिन मिलन है वो अनुभव का है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, लौकिक जीवन का एक सच्चा जो है सत्य उदाहरण है, मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा था, छोटा था, एक ही लौता था बच्चा, और उसकी हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई थी, छोटा था वो। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप ऑपरेट करेंगे हो सकता है खुल जाए और ये जिंदा रहे और चल पाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेट नहीं भी किया गया तो इसका जीना मुश्किल है, तो एक रिस्क लिया जाए कि इनका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो उस बच्चे को, माँ को तो बहुत लग रहा था, लेकिन चेहरे से वो दिखा नहीं रही थी, बच्चे को उमंग दे रही थी सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, सब हो जाएगा, बच्चा छोटा ही था। जब उसको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर भी इतने मासूम बच्चे को देखकर, डॉक्टर को भी बहुत अंदर से ये हो रहा था, उसने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ कहना है तुमको? तो बच्चा बड़ा मासूम से कहने लगा कि मेरे दिल का ऑपरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ तुम्हारे दिल का ऑपरेशन हो रहा है। तो कहा कि डॉक्टर आप जब ऑपरेशन करो तो आप एक काम करना कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यह कहा है कि भगवान अंदर रहता है यहाँ पर, तो जब आप मेरा हार्ट खोलो तो उस भगवान को जरूर देख लेना और फिर मुझे बताना कि वो भगवान कैसा होता है ना। अब आप सोचो कि वो डॉक्टर, वो बिल्कुल नास्तिक, जिसने भगवान को, मेडिकल साइंस को मानने वाला व्यक्ति, फिर भी उस मासूम बच्चे की वो रिक्वेस्ट पर उन्होंने जो भी है बात को तो सुन ली। और जब उसका हार्ट खोला गया तो बहुत प्रयास किया, और इतने एक्सपर्ट डॉक्टर होने के बाद वो कहते मेरे को पसीना छूट गया कि कहीं से भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, और अंत में मुझे ऐसे लगा कि मैं ये सब छोड़ दूं और बंद कर दूं अब इसको, ये बच्चा अब जिंदा रह नहीं सकता है, या तो ये थोड़ा भी होगा तो इसका यही होगा। तो तुरंत उसको याद आए कि वो बच्चा कितना मासूम था जिसने मुझे कहा था कि मेरे दिल में एक भगवान रहता है, माँ ने कहा है आप देख लेना वह। तो वो बड़े अंदर से उस पीरियड में उस डॉक्टर को बड़ा इमोशनल यह हुआ, उसने कहा भगवान मैं तो नहीं मानता हूँ कि तुम हो, लेकिन ये बच्चा मानता है कि तुम उनके दिल में हो, यदि तुम हो तो मैं इसको क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि तुम कौन हो। और बस कहते कि मैंने बस एक मिनट भगवान को याद किया कि यदि तुम हो तो कुछ तो अनुभव करा लो। और कहते मेरे आश्चर्य की बात है कि सारी नसों में वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया और मेरे इतने आंखों में पानी आ गया और वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ और वो बच्चा जिंदा हुआ। तो बाद में उसने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने देखा भगवान कैसा था? तो उसने कहा मैंने भगवान तो नहीं देखा लेकिन भगवान का अनुभव तो कर ही लिया मैंने, क्योंकि भगवान क्या है, अनुभूति है, अनुभव है, भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, उसका अनुभव। तो यदि मेरी योग की लाइन क्लियर है या यदि मेरे बाबा के साथ मैंने ज्ञान को स्पष्ट समझा है और मैंने यदि योग का अनुभव किया हुआ है, निश्चित मुझे अनुभव होगा बाबा मिलन का। मैंने देखा अपने जीवन में कि एक बहन थी जिसकी धारणा इतनी पक्की नहीं थी, और उसने कह दिया कि भाई मेरा सब पक्का है। और शुरू में तो शायद अभी तो फॉर्म नहीं भरवाते हुए पूछ लेते हैं चलोगे बाबा मिलन में, और कोई अच्छी बहने होती है तो वो ये भी पूछ लेती है कि आपकी 12 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का, पवित्रता का, शुद्ध अन्न का, डेली मुरली सुनने का आपका नियम पक्का है? वो कहते हैं हाँ दीदी पक्का है, तो उनको क्या करते ले आते, एक दो महीने की मार्जिन भी दे देते, चलो फिर ये भी देखते हैं कि ये पक्के है या नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा मिलने आएंगे फिर जैसे है जीवन हमारा हो जाएगा, नहीं, हमारी यही तो विशेषता है। अभी भी शिवरात्रि की मुरली में बाबा ने कहा एक बार व्रत लेने वाले हैं हम लोग। दुनिया की तरह बार बार व्रत लेने वाले हैं या एक बार का व्रत है हमारा? एक बार का, और वो भी कैसा, प्राण जाए पर व्रत नहीं टूट सकता हमारा। हम इतने पक्के हो जाते हैं तभी हम बाबा मिलन में आते हैं। तो एक बहन आई थी हमारे साथ, हमारे साथ तो नहीं कहेंगे लेकिन दूसरे ग्रुप में थी, लेकिन हमारे उसमें थी बाबा मिलन में, एक माता थी। उसको ये लग रहा था कि ठीक है अभी तो ठीक है, फिर देखेंगे। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि बाबा आए, बाबा मिले, और उसको इतना बाद में रोना आया। और हमने कहा जब बाबा से मिले, किसी बहन ने हमसे कहा कि देखो ये माता बहुत रो रही है। मैंने कहा आप क्यों रो रहे? कहते अरे मेरे को तो कोई अनुभूति नहीं हुई, मुझे तो लग ही नहीं रहा, मैं तो इतने उमंग से आई थी बाबा से मिलने के लिए। अब हमें भी लगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि इसके नियम भी ठीक नहीं थे, और जाने के बाद भी इसने नियमों को और ढीला कर दिया था। बाद में बाबा तो भूत भविष्य सब कुछ देख लेते हैं, जानते हैं बच्चे के अंदर क्या है और रियल जीवन क्या है, वो बाबा तो सब देखते हैं। तो उस माता को बैठने के बाद भी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि ये ईश्वरीय दरबार है, ये भगवान का दरबार है। पर बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा ब्राह्मण मुनि आत्माओं को कहते हैं जो सबसे पहले जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है। ऐसे नहीं बने हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण नहीं बने ऐसे, जिन्होंने यह व्रत पक्का लिया है उसको निश्चित अनुभव होता है। एक बहन ने हमसे कहा, माता ने, हम झूठ बोल के भी जाए तो आपका क्या जा रहा है? ठीक है, ऐसे एक और माता कहने लगी, अरे दीदी बाबा बुला रहा है, तुम कौन होती हो रोकने वाली? हमने कहा हम तो कोई नहीं होते रोकने वाले, लेकिन बाबा के नियम जरूर आपको रोकेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों की गुह्य फिलोसॉफी आप समझ लीजिए कि ईश्वर का अवतरण होना, भगवान का उपस्थित होना, भाग्य विधाता का उपस्थित होना और वरदान ना मिले, ऐसा हो सकता है? हर आत्मा को भगवान क्या करते, वरदान देते हैं। तो मैंने उस बहन से यही कहा कि यदि आप नियम नहीं भी पालन कर रहे हो और आप कह रहे हो कि बड़ा मुश्किल है, पूरे पूरे नियमों का पालन करना बड़ा मुश्किल है, आप बाबा के सामने जाओ और भाग्य विधाता ने यदि आपको तथास्तु कह दिया तो आप पूरे संगम में कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। पवित्रता की पहली सीढ़ी आपने नहीं चढ़ी और तथास्तु कर दिया भगवान ने, तो फिर हमेशा के लिए आपके भाग्य पर क्या हो जाएगी, लकीर लग जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमें कि बाबा का मिलन हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण मिलन है, जिसमें जितने नियम संयम, जितनी धारणाएं आप पक्की करते हो उतना ही अनुभूति आपको बहुत हो सकती है। उपस्थिति का एहसास आपको हो जाएगा। हमने बहुत बार देखा बातें बहुत छोटी मोटी होती है, लेकिन बाबा है, विश्वास भी है, क्योंकि बाबा हमेशा हर मुरली में हमें यह कहते हैं कि प्यार में 100% सभी पास है। सभी प्यार है तभी तो बाबा के घर यहाँ पर आए हुए हैं, 100% पास है। लेकिन निश्चय जो है जैसा है ऐसा समझकर जो बाबा मिलन करता है उसको निश्चित उसकी झोली क्या होती है, भर जाती है। देखो एक प्रैक्टिकल बात हम बता रहे हैं कि पांडव भवन की बात थी, जब बाबा मिलन में हम छोटे थे तब आए थे और सेवाएं भी कर लेते थे, बहुत भागदौड़ के करते रहते थे। उस समय यह होता था कि पांडव भवन में माना ओम शांति भवन में बाबा आए और भंडारे में यात्रा भोजन के पराठे थेपले भी बन रहे पूरी रात और बाबा भी उधर क्या करे मिलन बना रहे थे, ये सब चलता रहता था। तो कुछ सेवा करने के बाद यह था कि टीचर्स बहनों को आगे है नीचे बिठाया जाता था, तो हम सेवा करके आए तो हमें यह था कि टीचर्स बहन है तो हमको तो आगे बिठाने को बैठने को मिल ही जाएगा, हमारा अधिकार है। और हम जैसे ही पहुंचे तो हो सकता है भर गया होगा या जैसे भी हुआ होगा, और एक कोई बहन होगी छोटी होगी ज्यादा उसको नहीं समझ होगी, उसने कह दिया नहीं नहीं हम आपको आगे नहीं बैठने देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बैठने देंगे, मैं सवेरे से तैयारी कर रही हूँ बाबा से मिलना है, क्योंकि जब सेंटर से या घर से हम आते हैं जब हमें पता पड़ जाता है कि हमें बाबा मिलन में जाना है तो लगन लगी रहती है ना कि जाना है बाबा के घर जाना है, सूटकेस लगाते थे, बड़ा उमंग रहता है कि बाबा के घर जाना है, योग लगा रहता है जाना है। और उस दिन भी सवेरे से अमृत वेले से ये था कि बाबा मिलन करना है। और सेवा जो मिली थी तो सेवा भी कर ली हमने, अब बड़े उमंग से तैयार होके अच्छे नए कपड़े पहन के, उमंग रहता था बहुत, सब नए कपड़े बाबा मिलन के लिए रखते थे, जो भी नया सेट होता था वो सोचते थे कि बाबा मिलन में पहनेंगे, शुरुआत बाबा मिलन से। अब हम तो सज धज कर आ गए, सेवा करके आए थे, कोई वैसे तो लेट नहीं थे, उस बहन ने नहीं बैठने दिया। अब मैं पीछे ऐसे ही जीने पे जैसे हो पीछे जाकर बैठी, अब मन में वो रोना आए बहुत कंट्रोल ना हो। मुझे उन बहन से भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि देखो ये बिल्कुल समझ नहीं रही है कि जब मेरा अधिकार है आगे बैठने का और मुझे ये पीछे कर दिया इन्होंने, ये सारे बाकी भीड़ भर दी उन्होंने और हमको पीछे करे, जबकि हम तो सेवा करके आए हैं, नियम माना श्रीमत अनुसार हम सब कुछ करके आए, अब पीछे बैठे। लेकिन अंदर का भाव था कि बाबा से तो दूर है बैठे हुए, नजदीक तो है नहीं, उम्र थोड़ी छोटी भी थी तो भावनाएं ज्यादा होती है, तो वहां बैठे बैठे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, आंखों से पानी बहे जा रहे थे, कैसे भी अपने को अच्छा बनाने की कोशिश तो कर रहे थे हम, लेकिन लगा कि इतनी महीनों से मेहनत करके हम बाबा मिलन में आए और हमको पीछे कर दिया और ये ऐसे ही बैठ गए आगे लोग। फिर भी बाबा आए और आप इमेजिन नहीं करेंगे, 3-4 लाइन नहीं हुआ होगा बाबा ने बोला होगा, और बाबा ने कहा, पहला वाक्य बाबा ने कहा कि पीछे वाले बोलो, माना बाबा ने सबसे पहले शब्द किया पीछे वाले। मुझे इतनी खुशी हुई कि भगवान जानता है कि हमको पीछे कर दिया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा ने बार बार मुरली में 4 बार बोला होगा पीछे वाले। तो बड़ा अंदर से ऐसे ही एक बार शांति वन में ही था, तब भी ऐसा होता था कि जैसे जोन की सेवा होती है तो सीट मिलती नहीं है तो हम भाई बहनों को या माताओं को पहले भेज देते थे, हम सोचते थे हम सेवा कर ले, हम तो साल में कितनी बार भी आ जाते हैं ये तो एक ही बार आती है, तो हमने यही कर दिया कि चाय दूध में हम लोगों की ड्यूटी होती थी तो उनको माताएं बहनों को भेज दिया, अब जाओ। उस समय मुरमुरे है वो भी बटते थे क्योंकि भेल बनती थी, टाइम बहुत लगता था तो भेल भी तो पूरी बोरी भर भर के अब हमारे सारे कपड़े भी वैसे हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी तो सीट कहीं ना कहीं हमको तो आगे मिल जाएगी, ये लोगों को नहीं मिलेगी। और सारे हमारे कपड़े वो पीले पीले हो गए, फटाफट जाके करके हम जैसे ही गए हमने कहा नहीं मिलेगा तो पीछे बैठ लेंगे, कहीं भी बैठ लेंगे। अब हमें आइडिया ही नहीं थी कि पीछे पीछे भी फुल हो गया। और बड़ी दादी उस समय चक्कर लगाने, दादी प्रकाशमणि चक्कर लगाने आए, और दादी प्रकाशमणि चक्कर लगा के हम लोगों को देखा तो दादी ने तुरंत हमको कहा कि ऊपर जाओ, बालकनी में जाओ, बालकनी में जगह है। तो हमको यही खुशी हुई कि चलो बालकनी में जा रहे हैं तो दादी के कहने पर ही पहुंच रहे। अब बालकनी के कोने में जाकर हम लोग क्या हो गए, बैठ गए। पहले से माइंड प्रिपेयर्ड था कि आगे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरों को चांस लेने दो। तो वहां पर भी हम बहुत प्यार से बाबा से, तो उस मुरली में भी सबसे पहले बाबा ने यही कहा कि पीछे वाले, तो मुझे और पक्का हो गया कि बाबा पीछे कोने में भी देख लेता है कि कहां पर बैठे हुए हैं। और फिर बाबा ने चक्कर लगाया था पूरा शांतिवन में, बीच में से बड़ी दादी है वो बाबा को लेकर। और उस समय आप देखेंगे कि शायद हम आगे बैठे होते तो तुरंत उतर कर बाबा का हम देख नहीं पाते, लेकिन जो पीछे बालकनी में बैठा है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि बाबा कैसे पूरे हॉल में चक्कर लगा कर आए आ रहे हैं। तो विशेष उस समय यह अनुभूति हुई कि दादी गुलजार जी को हमने चलते हुए देखा हुआ है। दादी नॉर्मल जो उनकी चलने की स्टाइल थी वो हमें समझ में आती थी, लेकिन हमने दूर से जब देखा तो हमें समझ में आया कि ये ब्रह्मा बाबा की चलने की स्टाइल है। अगर हम आगे बैठते तो शायद ये लाभ नहीं मिलता, हमको दूर से दिखाई पड़ रहा था इतने हॉल में बाबा चलकर आ रहे हैं। और जैसे पीछे आए तो हम लोग तो ऐसे अंदर से वो बालकनी में से पीछे से झांक कर मुखड़ा जरा सा देख ले बाबा का, क्योंकि बाबा तो दिख ही नहीं रहा था हम लोगों को। और उस समय दादी को जैसे एकदम ध्यान में आया कि मैंने इन लोगों को ऊपर भेजा हुआ है, तो बाबा नीचे दृष्टि दे रहे थे। दादी ने कहा नहीं बाबा ऊपर वालों को देखो, ऊपर वालों को देखो। और बाबा खड़े हुए और बाबा ने सब ऊपर वालों को देखा। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? मुझे सीट मिले चाहे ना मिले, मुझे आगे बैठने को मिले चाहे ना मिले, मैं कहीं पर भी बैठूं, लेकिन मेरी भावनाएं यदि ईश्वर है उपस्थित, बाबा का अवतरण है, भगवान यदि आ रहे हैं, तो मेरी मनस्थिति के आधार पर मेरी झोली को वो क्या करता है, भरपूर करता है। मेरे नियम और मेरी धारणाओं को भगवान जानते हैं और उसी अनुसार वो वरदान से आज भी हमको क्या करते हैं, भगवान हमें लाभान्वित करते हैं। इसलिए पहले तो ये मनस्थिति को हम बहुत अच्छी बना दें कि जहां पर भी है जैसे भी है, होता तो है ही संगठन में, आगे पीछे होता ही है, हमने कुछ चाहा मिला कुछ और ये भी सब होता है, लेकिन ये सारी बातें दरकिनार करके हम यदि एक निश्चय पर रहे कि मुझे तो बाबा से मिलना है और कोई बात तो प्रायोरिटी पर है ही नहीं, मुझे बाबा से मिलना है, और निश्चित आप अनुभव करोगे कि कितना अच्छा हमारा बाबा मिलन भी हो सकता है। एक बार एक जो बहन थी वो हमको वहीं से, हम लोग तो बहुत सारे ग्रुप को लेकर आते तो अनुभव है, वो बार बार वहीं से कह रहे कि दीदी देख लेना सही कमरा दिलवाना, दीदी देख लेना हमारा भी ध्यान रखना। अब ध्यान तो हम रखेंगे लेकिन हर चीजें हमारे बस में तो होती नहीं है कि ध्यान रख लेना, देख लेना शांतिवन में ही दिलाना, दूर नहीं, दूर नहीं। तो भी मैंने उन सबको तैयार किया था, मैंने कहा ये सारे बाबा के घर है, सारे बाबा के घर है, चाहे यहां है चाहे वहां है। और ये भी कहा कि यदि मुझे पैदल जाकर वहां तक मनमोहिनी तक आनंद सरोवर तक जाना भी पड़ रहा है मेरे कदम में पदम जमा हो रहा है या नहीं, बताओ हो रहे हैं? या तो आप बाबा को कह दो गलत है, सब गलत है, नहीं, आप वहां से आते हो यहां तक चल के। दूसरी बात है कि ब्राह्मणों के पैर जहां पड़ेंगे तभी तो ये भूमि क्या हो जाएगी, तपस्वी भूमि और तपस्या से। अगर ब्राह्मण जाए ही नहीं तो तपस्या होगी वहां पर? आपके रहना भी एक क्या है, तपस्या है, वो तभी तो वो स्थान फलीभूत होगा। तो ये तपस्या के लिए हमें कहीं यहां दिया गया है, किसी को यहाँ देखो, पहले यहाँ टेंट में भी होता था, तभी भी बाबा से मिले, टेंट भी लगे थे, हम लोगों ने मिट्टी में जमीन पर लेटकर, बेड तो मिलने का कोई संभावना नहीं थी, जमीन पर ही जो है लेटे रहते थे और वही उसमें बाबा मिले, ये कॉन्फ्रेंस हॉल वाला ये बना। अभी हम दिन प्रतिदिन देखते जाते हैं कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, वो पावरफुल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैठ बैठ कर हम सभी ने क्या किया है, यहाँ पर तपस्या की है। तो बाबा का कोई भी नया स्थान जब तक हम जाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो वो वायुमंडल उसका पावरफुल बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता है। जरूर है कि कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं जाकर रहना पड़ेगा, इसलिए ये भी एक एक्सेप्ट कर ले। और यही हुआ कि उस बहन ने हमें चार बार कहा, लेकिन उसको मनमोहिनी में ही मिला एकोमोडेशन। अब मैंने तो खैर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा बाबा देखेंगे अब इनको क्या करना है, क्योंकि बड़ी इच्छा थी कि अंदर मिले, कोशिश भी की, नहीं मिल पाया, जो भी रहा मुझे ज्यादा याद नहीं है। लेकिन एक भाई थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कहा कि मुझे मिलने जाना है बाबा मिलन में, तो हमने कहा अब तो टेंट आ गया, टेंट में रहने की वो कह रहे हैं, देखो आपको चलना हो तो वहां जाकर फिर अपना मूड खराब नहीं करना आप। कहते मुझे अगर यहाँ किसी गली सड़क पर भी सुला दोगे ना तो भी मुझे जाना है, तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाबा के घर बाबा से मिलने जाना है। तो मैंने सोचा कि देख लेते क्या, मैंने कहा पक्का देख लो, सड़क पे सुला दे तो भी। कहते दीदी निश्चिंत रहो आप, मुझे बाबा के घर की वो धूल मिट्टी भी अगर मेरे उसमें लग जाएंगी तो भी मेरा अहोभाग्य है। और आप इमेज ही नहीं करेंगे कि उस भाई को जब एकोमोडेशन में गए, एकदम बढ़िया कमरा मिल गया अकेला। कैसे मिल गया? उसकी तैयारी में वो पास थे, और मैंने कहा तुम्हें वहां कैसे मिल गया भाई? कहते मुझे तो बहुत यहां मिल गया कमरा। कहते चाहिए किसी को दे दो? मैंने कहा अभी भी तैयार हो? कहते हाँ तैयार हूं। मैंने कहा नहीं, ये तो आपके भाग्य का है, अब तो उसी में रहो। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि छोटी मोटी बातें तो सभी आती ही हैं, संगठन में आते हैं, बहुत बातें होती है, हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, हो सकता है कमरे में भी लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार के लोग मिल भी जाते हैं। कई बार हमारी इच्छा होती है कि ये मेरी ग्रुप की है तो उसको मेरे साथ ही रखा जाए, लेकिन ये सब चीजों को हम छोड़ दें तभी अनुभूति का जो अच्छा आनंद हम ले सकते हैं कि मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरे साथी कौन है, कौन है, किससे मिलने आए हैं? बाबा से मिलने आए हैं, अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरी एरिया में रह रही है, ये मेरी पाठशाला की है या मेरी सेंटर की है, मेरी इनसे बहुत पटती है, तो मुझे इनके साथ ही रख दिया जाए। बगल वाला कमरा भी नहीं चाहिए, इसी के साथ चाहिए। तो बाबा मिलन की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण अनुसार हर चीज आपने जो सोचा है वो आपको प्राप्त नहीं भी हो सकता है। पेपर हमारे यहां भी आएंगे और उसी में अगर डिस्टर्ब हो गए तो बाबा मिलन तो क्या हो गया, एक तरफ वो आनंद, वो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए जब हम ब्राह्मण बने हैं, पक्की नियम धारणाएं बाबा के उस पर अगर हम चल रहे हैं और बाबा से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी अवस्था को सबसे पहले अच्छा करें, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का ये भी अमूल्य समय अब नहीं मिलेगा, आगे भी संगठन परिवार नहीं मिलेगा। सबने कोरोना में अनुभव करके देख लिया ना, कर पाए हम कुछ भी? कुछ नहीं कर पाए, कैसे हुआ। और वर्तमान जीवन की हम आपको एक तरीके से डरा नहीं रहे हैं, बाबा तो हमेशा बहुत प्यार से हमको आने वाले समय के बारे में बताते भी हैं, उसकी भयानक तस्वीर भी बाबा हमारे सामने रखते हैं। लेकिन दुनिया की तरीके से भी ये बहुत प्रेडिक्शन हो गया था कि 2025 का जो समय, हमने ऐसे ही एक रिसर्च के तौर पर या उसके कारण मैंने 2025 की जब शुरुआत थी तभी मैंने थोड़े बहुत लोगों के प्रेडिक्शन, जो बहुत जाने माने लोग थे उनके प्रेडिक्शन जो है वो मैंने थोड़े से सुन लिए कि देखते हैं ये लोग क्या अनुभव कर रहे हैं। हमारी तो तैयारी विनाश और स्थापना दोनों की चल ही रही है, हमारी तो विनाश को भी हम देख रहे हैं, स्थापना जैसे जोर पकड़ेगी, विनाश तो हमें पता है वो भी जोर से जो है तीव्र गति से होना है। लेकिन मैंने देखा कि मैं देखूं दुनिया वाले क्या कहते, तो वही उसमें सारे उसका सार था कि 2025 आग जली, आग से बहुत मृत्यु होगी, जो आग तत्व है, अग्नि तत्व है, उसी से ज्यादा डैमेज होगा। तो आप देखो सारा 2025 कैसे हुआ, उसी से हुआ। लेकिन अभी आगे वाली जो भविष्यवाणी है उसमें एक बहुत फेमस है, उन्होंने यह कहा कि अब जो होगा कि कोरोना नहीं लेकिन कोरोना का बाप आने वाला है, ये उसने कह दिया है। कोरोना वायु से माना जो है फैला हुआ था, लेकिन ये होगा पानी, पानी से। और इसलिए उन्होंने तो प्रेडिक्शन में ये कह दिया कि उसको उबाल कर पी लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तो चलो दुनिया भी बातें है, लेकिन कहने का मतलब उसने कह दिया कि अभी आने वाला समय और भी खराब जो है वो आने वाला है। और उसमें बहुत सारे प्रेडिक्शन उन्होंने किए हुए हैं कि क्या क्या होगा। और एक बहुत बड़ी जो बात कही कि जो ये नेटवर्क है वो भी फेल हो जाएगा और 15 दिन के लिए लाइट है वो चली जाएगी, बिल्कुल सप्लाई जैसे अमेरिका में हुआ था ऐसे ही हो सकता है, बिजली नहीं होगी, मिलेगा नहीं। तो इसकी तैयारी क्या क्या करेंगे लोग? तो कई लोगों ने कहा कि हम तो मोमबत्ती जला देंगे, सरसों का दीपक जला देंगे, दुनियावी जो लोगों का व्यू था। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, स्थापना तो पहले ध्यान देना है, विनाश का तो ठीक है। तो कहने लगे, फिर हमें सबको ध्यान में आया कि पानी कहाँ से आएगा, और ब्राह्मणों को क्या चाहिए, नहाना पहले चाहिए, खाना मिले ना मिले नहाना पहले चाहिए, तो पानी कहाँ से। तो कई लोगों से ऐसी बात चली कि हमने तो समर्सिबल लगवा दी है, वो खींचू वाला जो सिस्टम था ना हैंडपंप, जो देहात में गांव में आज भी है, तो वो वाला सिस्टम तो किसी के पास है? मैं नहीं समझती हूँ दिल्ली में भी होगा, नहीं होगा तो पानी है सेंटर पे। देखो इन्होंने प्रिकॉशन करके रखा हुआ है, चलो पहुंच जाना, कौन सा सेंटर बता देना, तो अगल बगल वाले तो पहुंच ही जाएंगे। कहने का मतलब जब पानी सप्लाई नहीं होगा तो क्या खाएंगे, खाने का प्रबंध की भी जरूरत नहीं है, पहले पानी तो चाहिए। तो ऐसी बातें चल रही थी ऐसे ही। तो फिर उन लोगों ने उससे सॉल्यूशन मांगा, तो उन्होंने कहा कि आप जो गांव वाली देहाती लाइफस्टाइल है उसमें जीना फिर से शुरू कर दो, निराधार जिसको हम कहते हैं, बाबा जो कहते हैं ना साधनों से परे, ये जीवन को फिर से आप क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि सारे लोग ऐसे मरेंगे, सारा ये होगा, वॉर होगा। देखो कई लोगों ने कॉन्फिडेंशियली भी बता देते कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा निश्चित है। लोगों ने पूछा कि कहते भारत ही जीतेगा, भारत का ही जीतना है, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, तमाम प्रेडिक्शन जो है लोगों की है, हम सब समझ रहे हैं। एक वॉर शुरू होना माना, युद्ध शुरू होना माना, कितनी भयानक स्थिति जो है वो हो ही जाएगी। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या सभी लोग ऐसे मर जाएंगे, सब लोग ऐसे तकलीफ में? उन्होंने कहा नहीं, एक प्लस पॉइंट है, थोड़े लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो कहा क्या है? कहते जिन व्यक्तियों का गुरु बलवान होगा वो बहुत सेफ रहेंगे। तो आप सबका गुरु बलवान है सबका? सतगुरु मेरे साथ है, तो हम सबका, आप कोई भी ज्योतिष को अगर दिखा दे, ब्राह्मणों का जन्म कुंडली या हाथ देखकर कोई भी ज्योतिष ये कहेगा आपका गुरु बलवान है, क्योंकि सतगुरु का हमने क्या किया है। और दूसरा उन्होंने बताया, देखो ध्यान से सुन लीजिए, दूसरा उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने ब्रह्मांड को कुछ दिया है उसको ब्रह्मांड लौटा कर उनकी रक्षा करेगा। तो हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। देखो एक बहुत सूक्ष्म गहरी बात हम योग की आपको बता रहे हैं कि कुछ चीजें संसार में अविनाशी हैं, जिसका नाश नहीं होता, और उन चीजों में आप देखेंगे शब्द। अच्छा आप ये बताओ कि मैं यहां से अमेरिका अगर फोन करूं, आप कहीं अमेरिका में कोई रहने वाले आपके रिलेटिव्स को अगर आप फोन करते हो तो आपके शब्द वायुमंडल से कहीं चेंज हो जाते हैं? नहीं हो जाते। एज इट इज वहां पर पहुंचते हैं या नहीं? इसका मतलब है शब्दों का नाश नहीं होता। जो ब्रह्मांड में हम दिए जाते, जब शब्द नाश नहीं होते हैं तो वाणी नाश नहीं होती, तो वाइब्रेशन नाश हो जाएंगे? नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। वाइब्रेशन तो और भी क्या है, पावरफुल चीज है। इसलिए दो बातों का अटेंशन अभी भी रखिए। इस वाणी से जो आप भेज रहे हो ब्रह्मांड में, ये लौट कर मुझे ही क्या होगा, वापस मिलेगा, ये विनाश नहीं होगा। कर्मों की बात तो जाने दीजिए, लेकिन ये वाणी जो चलती है ना हमारी ब्राह्मणों की, कई बार इस वाणी को भी आप समझ लीजिए कि जो आपने ब्रह्मांड में दिया है वो हजार गुना पदम गुना लौट कर आपको क्या होगा, मिलेगा। और वाइब्रेशन, प्रकाश जो दे रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, क्योंकि अभी हम सब भक्ति से निकलकर कहां पर आ गए, ज्ञान मार्ग में आ गए, बाबा के पास आए, पहले भी आए थे और आज भी आए हैं, लेकिन हमारे में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुआ है। पहले दिन जब हम सेंटर पे आए तो हम कुछ इच्छाएं लेकर आए थे, कोई ना कोई बात थी हमारे उसमें, और किसी ने कहा वहां जाओ अच्छा है, फिर किसी ने कह दिया ये भगवान है, तो मैंने भगवान को कह दिया कि भगवान जी मेरा ये काम जरूर कर देना। यदि है ब्रह्मा कुमारी में भगवान आते हैं तो भगवान जी मेरा काम ये जरूर कर देना, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की नौकरी हो, किसी की पढ़ाई हो। सब आप गृहस्थ वाले हो, आप समझते हो कि ये सब कर्तव्य के साथ मुंह की भी रगे हमारी क्या है, जुटी हुई है। तो हम सब ये इच्छा लेते, आज भी हमें लगता है बाबा उसकी तबीयत ठीक कर देना, बाबा उसका वो कर देना, बाबा हमारा ये कर देना, बाबा परिवार में धन की वृद्धि करवा देना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा देना। कहते हो या नहीं? कहते हो ना? तो अभी तक मेरे मन में यह था कि बाबा मेरे काम आए, लेकिन यदि मैं ब्राह्मण बन गए, पक्के बन गए, समझ में आ गया, तो को बाबा मैं आपके क्या काम में आऊं, मुझे बाबा के काम आना है। बाबा मेरे काम आए कोई बड़ी बात नहीं है। अब संकल्प क्या बदलोगे? मुझे बाबा की स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। मेरे पास जो रिसोर्सेस है, जो भी है, उसको मुझे क्या करना है, बाबा के कार्य में, काम में लगाना है मैं बाबा के काम आ जाऊं, इससे बड़ा भाग्य कोई भी होगा नहीं। तो ये संकल्प अगर आप लेंगे तो आपका क्या होता जाएगा, हर चीजें आपकी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। बाबा आपका काम तो करेगा ही करेगा, जब मेरा बाबा से संबंध है, अधिकार है, पक्का अधिकार है, तो क्या बाबा हमारे काम नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए योग में ये भी छोड़ दो कहना, वो देख रहा है वो करेगा, हमारा काम वो ही करेगी, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो केवल उससे क्या करना है, संबंध, अधिकार का संबंध निभाना है, बाकी काम तो अपने आप हो ही जाएगा। एक छोटी सी बात, एक हंसी की बात या एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान है वो संबंधों के आधार पर हमारे सारे कार्य को क्या करता है, करता है। तो एक बार बताते हैं कि एक बहन थी, माता थी, उसका बड़ा ठाकुर जी से प्रीत थी, तो उसने ठाकुर जी लाकर घर में क्या कर दिया, बिठा दिया, और उनका छोटा बच्चा भी था। तो पहले जो है वो छोटे बच्चे को सभी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि आप सब अनुभवी हो, घर में जब छोटा होता है तो कुछ भी खाएंगे तो पहले उसको बुलाएगा, आजा खा ले, तू भी खा ले। तो उस छोटे बच्चे को इतना सभी प्यार करते थे, खिलाते थे। अब वो ठाकुर जी आ गए घर में, तो अब सबसे पहले किसको खिलाया जाता था, ठाकुर जी को खिलाया जाए। मम्मी डांटती थी कि कोई नहीं खाएगा, पहले भोग लगेगा, तो उसको दिलाए। तो उसको बड़ा होता था कि अब तक तो मैं था, ये कहां से आ गया बीच में। तो भी उसको बड़ा होता था कि इसको खिलाया जाता है। तो माँ ने एक बार उससे यह कहा, कहीं काम करने जाती थी, उसने कह दिया कि ऐसा है पानी भर के आना। तो उसने, माँ तो गई, इसने मटका उठाया और उसकी नजर उसी के पर बार बार जाती थी, हमेशा इधर से जाए उधर से जाए, क्योंकि उसको लगता था कि ये सबसे ज्यादा घर में आ गया है। तो बड़े टेढ़ी निगाह से देखते हुए उसने कहा कि खाने में तो नंबर वन हो, कुछ काम किया करो। ऐसे करके मटका उठा के अपना चला। तो उसने देखा कि वो वहां पहुंच गए, ठाकुर जी तो वहां पर पहुंच गए कि लाओ मैं पानी भरता। उसने कहा नहीं, माँ ने मुझे कहा मैं ही पानी। उसने माना नहीं, ठाकुर जी ने उससे लेकर पानी भर के उसके साथ आए। अब पानी भर दिए तो कपड़े तो गीले हो गए, भक्ति मार्ग की ये बातें, कपड़े गीले हो गए। माँ शाम को आई तो उसने देखा कि ये ठाकुर जी के कपड़े क्यों गीले हो गए। तो उन्हें लगा कि जरूर इसकी शरारत होगी, इसको पानी भरने भेजा है तो इसी ने इन पे डाला जरूर होगा। तो उसे डांट फटकारा, उसने कहा मैंने नहीं डाला है, मैंने नहीं डाला, कहते तुम ही होगे। फिर दूसरे दिन कहा उसको, बच्चे को, कि जो गेहूं पिसवाया आटा लेकर आना। अब ये चला, उसने कहा इनको कह दो, माँ ने ध्यान नहीं दिया। तो ये ठाकुर जी भी, उसने कहा कि तुम मत आओ। फिर माँ डांटती है मेरे को, तुम क्यों मेरे पीछे आ जाते हो, तुम बैठो वहीं पर, खाया करो तुमको, मैं ही काम करूंगा। तो उन्होंने नहीं माना और ले आए। अब शाम को आई तो माँ ने देखा कि वो आटा उसके ऊपर लगा हुआ था, उसका ये इसको ही ज्यादा जलन होती है इससे, यही क्यों लगाया तुमने इसको आटा क्यों लगा। उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाया, ये आते है मेरे पीछे। माँ ने कहा बड़ा आते है तुम। तो भी माँ ने आना जाना वो कर दिया। और तीसरे दिन माँ ने कहा, क्योंकि घर के बड़े कहीं गए थे तो उसने कह दिया थोड़ी लकड़ी ले आना। उन्होंने कहा पहले इसे कह के जाओ, इसे कह के जाओ पहले, ये ना आए मेरे पीछे। माँ ने कहा हाँ ठीक है, देख लिया तुमने, ऐसे करके। अब ये चले तो वो तो नियम बन गया था। और इतने में माँ किसी काम से वापस आई तो उसने देखा कि ठाकुर जी गायब है। अब उसको बड़ा डर लगा कि ऐसा तो नहीं है ये लेके गया होगा इनको, ऐसे करके। वो तो मूर्ति में ही भगवान मान रहे थे। तो और जाकर वो भागी जंगल की तरफ, तो उसने देखा कि वो ठाकुर जी तो लकड़ी उठा के आ रहे थे और ये बगल में आराम से चल रहा था। अब वो तो एकदम हो गई कि अरे, उन्होंने तुरंत पैर छुए और कहा मुझे माफ कर दो भगवान जी, ये बच्चा ना समझ है, तुमसे काम करवा रहा है, ये करवा रहा है, हमें क्षमा कर दो, ये तो जलन करता रहता है आपसे। तो कहते भगवान जी ने कहा कि सारे घर में सबसे ज्यादा प्यारा तो यही है कि ये अधिकार से मेरे से बात तो कर रहा है, तुमने तो भगवान भगवान कह के ऊपर बिठा के रख दिया और इसने तो मुझे क्या कर दिया है, संबंध में बांधा हुआ है अपने। तो भगवान संबंध को बांधने वालों के हर काम में, बाबा को भी ऊपर बड़े भगवान है ऊपर नहीं, संबंधों का अनुभव करके अगर आप करोगे तो अपने आप आपके सारे काम क्या हो जाए, अपने आप करें आप, अधिकार हुज्जत तो रखिए उस भगवान के ऊपर। कहने की भी जरूरत नहीं है कि बाबा ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, अरे वो मेरा है। और माताओं को तो आप समझ रहे हो कि सबको बहुत अनुभव रहता है कि बाबा मेरा है या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? बाबा का साक्षात अनुभव करेंगे। कहो उस भगवान जी से, बहुत बैठे रहे तुम ऊपर, अब नीचे आओ। रोज भोग ऊपर खिलाने जाते, आज तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो ये जरूर बाबा मिलन का, क्योंकि बाबा का जो यज्ञ है वो इसी तरह से चला है। पहले भी देखो, सबसे पहले सौगात दी जाती, फिर गोसुन कमसुन की टोली दी जाती, यज्ञ की परंपरा आज भी हमारी बड़ी बड़ी दीदियों ने, सभी ने आज भी मेंटेन करके रखा है। तो आज सभी एकत्रित हुए ही हो, देखो आते ही बाबा के घर की हमें क्या मिलेगी, सौगात मिलेगी। और सौगात में भी हमेशा देखो ऑप्शन रखे गए थे। हम जब छोटे थे तो ये बड़ी दीदी रखती थी, कहती ये चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, फिर हम कहते थे ये चाहिए। तो आज भी आपको ऑप्शन मिलेंगे कि क्या चाहिए, क्या लेना है, तो ये भी आप लेंगे। और बाबा तो गोसुन कमसुन की टोली में, या दादियों ने भी हमें पता है कि मिश्री इलायची ये सब मिलती थी। तो आप सभी भी जब जाते हो तभी भी बाबा के घर की टोली तो आपको मिलती है या नहीं मिलती है? सबको मिलती है ना, कोई भी अगर रह भी जाता है तो तुरंत कहेगा दीदी हमारी टोली रह गई है। बिल्कुल, बाबा के घर से भोजन भी मिलता है, यात्रा के लिए टोली भी मिलती है। कहने का तात्पर्य हमारा है कि यज्ञ नहीं बदला है, आज भी वही परंपराएं चल रही है, आज भी वही मिलन है, आज भी वही बातें चल रही है। थोड़ी सी विधि और मन के जो कहेंगे अनुभूति की जो विधि है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, तो उसी का अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर उस विधि को समझ लेंगे तो आप अनुभव करोगे कि वास्तव में इस समय का हमारा बाबा मिलन एक यादगार हो जाएगा, कल्प कल्प का, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि बाबा हमारा रक्षक है, बाबा का परिवार हमारा 5000 वर्ष का ये परिवार है। तो फिर हम आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ओम शांति। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत उमंग से आप पुरुषार्थ कीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा रास्ता खोल रहा है। दुनिया के रास्ते बेशक बंद हो जाएंगे लेकिन हमारे लिए तो बाबा, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा उनके लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी ने अपने अनुभव युक्त बोल और बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां और एक्सपीरियंसेस सुना करके हम सबको भरपूर कर दिया, ऐसा है ना? तो जोरदार ताली बजाइए दीदी जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, थैंक यू।
बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, प्रभु शरण।